జయ రాధ మాధవ కుంజ విహారీ జయ గోపీజన వల్లభ గిరివర ధారే జయ జయ గోపీజన వల్లభ గిరివర ధారే జయ రాధ మాధవ కుంజ విహారే జయ రాధ మాధవ కుంజ విహారే జయ గోపీజన వల్లభ గిరివర ధారే యశోదానందన వ్రజజనరంజన యశోదానందన వ్రజజనరంజన యమోనతీరావనచారే యమునతీరావనచారే జయ రాధ మాధవ కుంజ విహారే జయ జయ రాధ మాధవ కుంజ విహారే జయ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే जय राधा गिरिधारे राधा गिरिधारे राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बालदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय नित्य गौर हरि बोल रे बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् नश्च प्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी श्रीमद्भागवतम स्कंद सात अध्याय छह श्लोक संख्या तीन सुखमेन्द्रियकं दैत्या सुखमेन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनां देहयोगेन देहिनां सर्वत्र लभते दैव्या सर्वत्र लभते दैवात् यथा दुःखमयतन आयतनतः यथा दुःखमयतनतः यथा दुःखमयतनतः सुखमेन्द्रियकं दैत्या सुखमेन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनां देहयोगेन देहिनां सर्वत्र लभते दैवात् सर्वत्र लभते दैवात् यथा दुःखमयत्नतः यथा दुःखमयत्नतः सुखमेन्द्रियकं दैत्या deha yogena dehinam sarvatra labhyate daivan yata dukkam ayatnataha sukamendrikam daitya yogena dehinam sukam indrikam daitya deha yogena dehinam deha yogena dehinam vatra labhyate deva matajis samendrikam daitya deha yogena dehinam sarvatra labhyate devya indrikam daitya deha yogena dehina sarvatra labhyate daivyat yata dukkam ayatnatah sukam indrikam daitya sukamendrikam daitya deha yogena dehinam sarvatra labhyate daivat yata dukkam ayatnatah sukam suk endrikam bhautik indriyon ke प्रसंग में दैत्या दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों देह योगेन विशेष प्रकार का शरीर होने के कारण देही नाम समस्त देहधारी जीवों का सर्वत्र सभी जगह किसी योनि में लभ्यते उपलब्ध है दैवात भाग्य से यथा जिस प्रकार दुखम दुख अयत्नतः बिना प्रयास के अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है वह तो किसी भी योनि में अपने विगत सकाम कर्म के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना प्रयास के उस तरह स्वतः प्राप्त होता है जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। तात्पर्य इस भौतिक जगत में सभी प्रकार के जीवन में कोई न कोई तथाकथित सुख तथा दुख लगा रहता है। कोई नहीं चाहता कि दुख आए किंतु वह आता है। इस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी दुख स्वतः प्राप्त होता है। ये सुख दुख किसी भी जीवन में बिना प्रयास के मिलते हैं। अतएव दुख के विरुद्ध लड़ने या सुख के लिए कठिन श्रम करने के समय तथा शक्ति का अपव्यय व्यर्थ है। मनुष्य जीवन में हमारा एकमात्र कर्तव्य भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत करना है और उस प्रकार भगवत धाम जाने के लिए योग्य बनना होना चाहिए। हमारे द्वारा भौतिक शरीर स्वीकार करते ही सुख तथा दुख आते रहते हैं। हम किसी भी दशा में ऐसे सुख दुख से बच नहीं सकते। अतएव मनुष्य जीवन का सबसे अच्छा उपयोग भगवान विष्णु के पास संबंध को जागृत करना है। ओम अज्ञात विरांदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वपदान्तिकं वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणताशिविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधौ दीनगिन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को शिक्षा प्रदान करते हुए ये तीसरा श्लोक को उच्चारण करते हैं। आपने पहला श्लोक में सुना कि प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को कहा कि कौमारे ताचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतानि हा सुदुर्लभम मानुषम जन्म अद्रुवम अर्थधम। तूने कहा कि ये मनुष्य जन्म बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य जन्म भले ही कम समय के लिए है लेकिन फिर भी ये सुदुर्लभ है, बहुत मुश्किल है प्राप्त करना। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भागवत धर्म को आचरण करना चाहिए। तो अगर कोई बच्चे लोग कहेंगे अरे हम तो छोटे बच्चे हैं, ये धर्म धर्म की बातें बाद में हैं, अभी तो हम तो ना ब्रह्मचारी धर्म पालन करेंगे कर सकते हैं ना गृहस्थ या वानप्रस्थ, तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मैं जिस धर्म की बात कर रहा हूँ ये शारीरिक धर्म नहीं है, आर्थिक धर्म नहीं है, ये भागवत धर्म है। इसलिए वो आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। तो कौमारेत आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतान यहाँ, तो ये श्लोक उन्होंने उच्चारण करने के बाद तुरंत अगले श्लोक में तो प्रश्न उठाया जा सकता है, कोई बालक प्रश्न पूछा होगा तो आपने कहा कि आचरित आचरण करो को किसका, भागवत धर्म का आचरण करो, तो कैसे आचरण करेंगे उसको, हाउ टू कंडक्ट भागवत धर्म, उसके पीछे क्या रहस्य है, मतलब वो धर्म को कैसे आचरण करेंगे, उस प्रश्न का जवाब देते हुए ये दूसरा श्लोक उच्चारण किया गया है। यथा ही, यथा मतलब जिस प्रकार, कैसे आचरण करेंगे, जिस प्रकार पुरुषस्येह विष्णोर पादोपसर्पणम, ये कल का श्लोक था, पुरुषस्येह विष्णो पादोपसर्पणम यदेश सर्वभूतानां प्रियः आत्म ईश्वरः सुहृत। तो ये श्लोक में तीन शब्द आया है, तो भगवान को आपको तीन प्रकार मानना होगा, एक है प्रिय मानना होगा, दूसरा है आपको मानना होगा मेरी ईश्वर है आत्मेश्वर, संपूर्ण तरीके से मैं उनका शरणागत हूँ, वो मेरे जीवन का पूर्ण तरीके से ईश्वर है, और सुहृद वो मेरे मित्र है। ये तीन प्रकार भगवान को मानते हुए क्या करना होगा, विष्णु पादोपसर्पणम, विष्णु पादोपसर्पणम मतलब उनका शरण ग्रहण करना होगा। कैसे भक्ति करेंगे, भगवान विष्णु का शरण ग्रहण करते हुए और विष्णु को अपने प्रिय मानना और अपने जीवन का ईश्वर, एकमात्र ईश्वर के रूप में स्वीकार करना और अंततः सुहृद करके स्वीकार करना। तो सीधा प्रहलाद महाराज तो कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप सीधा भगवान को राग से प्रेम से भक्ति करना, यानी बहुत प्रेम से उनको अपने जीवन में स्वीकार करना। जिस प्रकार कोई व्यक्ति स्वादिष्ट व्यंजन ग्रहण करता है उसी प्रकार बहुत प्रेम से भक्ति को करना चाहिए, यानी एक प्रकार प्रेम भक्ति का, राग भक्ति का उन्होंने सीधा उल्लेखन किया। तो उसके बाद कोई प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है अभी मनुष्य शरीर मिला है, हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, देयर सो मेनी मटेरियल डिजायर्स, तो ये इच्छाओं के प्रति हमारे क्या भावना होना चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग में हमारी भौतिक इच्छाएं बाधक है। जब भक्ति करते हैं तो ऐसा क्या चीज़ है जो हमको भक्ति से दूर लेके जाता है, भक्ति में रुचि भक्ति नहीं करने का सलाह देता है, यह भौतिक इच्छा। जितने मन में भौतिक इच्छाएं हैं उतना हम भक्ति से दूर जाएंगे, तो उतना हमको भक्ति में घातक है। इसलिए भौतिक इच्छाओं के प्रति क्या धारणा बना के रखना चाहिए, एक लाइन में तो बता दिया, ठीक है भगवान से प्रेम करना चाहिए, ऐसा क्या चीज़ है जो मुझे प्रेम करने नहीं दे रहा है, ऐसा क्या चीज़ है जो मेरी भक्ति में रुकावट पहुंचा रहा है, ये मेरी भौतिक इच्छाएं, भौतिक सुख प्राप्त करने की जो लालसा है, उसको उसके प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, उसको खत्म करने के लिए क्या विचारधारा रखना चाहिए, या ये भौतिक इंद्रियुक्ति करने के लिए ये जो प्रयास है ये प्रयास की निरर्थकता क्या है, उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो ये श्लोक बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है।
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या कृष्ण भक्ति के साथ सबसे पहला संपर्क या सबसे पहला प्रवचन में सबसे पहला बात मुझे यही सुनने को मिला था, ये प्रहलाद महाराज का ये श्लोक मुझे अभी भी याद है वो दिन। कभी कभी ये भक्तों के लिए भी अच्छा है, ये एक्सरसाइज करना चाहिए, मैं भक्ति में कैसे आया, हाउ आई केम टू डिवोशनल सर्विस। ये स्मरण करने से हमेशा हमारा उत्साह बना रहता है, हमारा जो भक्ति है वो ताज़ा रहता है, क्योंकि शुरुआत में जो हमारा उत्साह है वो धीरे धीरे ऐसा लगता है थोड़ा सा ख़त्म होता रहता है। तो फिर से वही उत्साह बना के रखने के लिए जो शुरुआत के जो दिन हैं कैसे हैं भक्ति में आया उसको याद करना हमेशा अच्छा है। तो मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मैं कॉलेज में हर रोज़ सुबह शाम बहुत कसरत करता था, एक्सरसाइज करते थे, तो शाम के टाइम कम से कम 2 घंटा एक्सरसाइज करके आखिरी जो एक्सरसाइज का आखिरी जो होता है चरण होता है वो बड़ा स्प्रिंट होता है, बहुत तेज़ी से भागो, जितना हो सके उतना तेज़ी से भागो। ऐसा कॉलेज का जो कैंपस है उसका राउंड ले रहा था, तो तेज़ी से भाग रहे थे, देखा कि बड़ा बस दिखाई पड़ा। उसे क्या हो गया, अचानक इतना बड़ा बस कहाँ से आया कॉलेज में? उसके ऊपर लिखा था इंटरनेशनल सोसाइटी। बाद में वो कॉन्शियसनेस पढ़ने को भी नहीं हुआ, मतलब उतना तेज़ी से भाग रहे थे, तो ये इंटरनेशनल सोसाइटी क्या है इंटरनेशनल। तब मैं वो स्प्रिंट ख़त्म हो गया, अब जैसे मैं अपने हॉस्टल में जा रहा था, मेरे मित्र ने कहा कोई प्रोग्राम चल रहा है ऑडिटोरियम में चलो, तो मैं बोला आता हूँ तुरंत। जाके तुरंत नहाया 5 मिनट में, ऐसे तो मिलिट्री ट्रेनिंग में क्या होता है, तो आप 5 मिनट में नहाना धोना सब कुछ ख़त्म कर सकते हो। तुरंत किया अपना यूनिफॉर्म पहना, तो शाम को भी कॉलेज में जाना पड़ता है, ऑडिटोरियम में जाना मतलब ऐसे नहीं जा सकते, तो यूनिफॉर्म पहन के सीधा अंदर गया। अंदर जाके देखता हूँ पूरा ऑडिटोरियम चकाचक भरा हुआ है, तो इतना बड़ा प्रोग्राम है ऐसा कोई भरा नहीं रहता कोई प्रोग्राम में, और लड़कों को इकट्ठा करना वो भी, मैं देखता हूँ ऊपर स्टेज के ऊपर एक गेरुआ वस्त्र धारण करे पतले से एक भक्त है और वो कुछ मंत्र बोल रहे हैं। बोला ये कौन सा प्रोग्राम है, ऐसा तो प्रोग्राम तो कॉलेज में कभी हुआ नहीं। तो एकदम आके देखा कोई सीट खाली नहीं है, तो जैसे मैं आया हूँ तो थर्ड ईयर में थे, तो मेरा तो एक पोजीशन था उधर, आई वाज़ ए कैडेट कैप्टन, तो उधर के सब लोगों ने बोला ठीक आके बैठो। मैं बोला कि नहीं डिस्टर्ब नहीं करना है क्योंकि चल रहा है करके, मैं पीछे खड़ा हो गया दीवार को टच करके खड़ा हो गया। तो जैसे वो असलियत में वो जो भक्त प्रवचन दे रहे थे उनका नाम तो दयाराम प्रभु आप जानते होंगे, तो सबसे पहला उन्होंने कहा कि आज का जो टॉपिक है, टुडेज़ टॉपिक इज़ सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो सीधा उन्होंने ये शुरू किया कि ऑल द फिलासफर्स इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट दैट द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल एक्शंस इज हैप्पीनेस। उनका कहने का मतलब है दुनिया में सारे जितने भी दार्शनिक हैं ये सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं है, कि हर प्रयास के पीछे इस दुनिया में कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है कोई भी प्रयास करता है उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य है सुख, सुख की प्राप्ति। अगर उसको ऐसा लगता है ये कार्य करने से मुझे सुख नहीं मिलता है वो कार्य करेगा ही नहीं। यानी हर कार्य के पीछे जो प्रेरणा का जो शक्ति है द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल द एक्शंस, मान लो कोई स्कूटर चला रहा है, कोई बाइक चला रहा है, कोई हवाई जहाज में जा रहा है, कोई मार्केट जा रहा है सब्जी लेने के लिए, कोई घर बना रहा है, कोई कंप्यूटर चला रहा है, यू नेम एन एक्टिविटी, खेलने के लिए जा रहा है, कोई विवाह कर रहा है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई भी कार्य, ऐसा कोई कार्य बचा नहीं, हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ प्रेरणा होना चाहिए तभी कुछ कर पाएगा। वो क्या है वो प्रेरणा का स्रोत, वो प्रेरणा यही है कि मैं सुख प्राप्त करूँगा, ये कार्य करूँगा, उतना इतना विश्वास है ये कार्य से मुझे सुख मिलेगा तभी वो कार्य करता है, ये मान्य है, ये सभी लोग मानते ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैंने बोला कि वाह ऐसा बात तो कभी सुनने को तो नहीं मिला, स्पष्ट बात है, सही बात है। तो ये सेंटेंस के बाद तुरंत उन्होंने कहा कि एवरीबडी इज ट्राइंग टू बिकम हैप्पी, एग्जैक्ट शब्द है, अभी भी ऐसे है, रात को कभी कभी स्मरण में आता है शब्द, एवरीबडी इज ट्राइंग टू बिकम हैप्पी, हर व्यक्ति सुखी होने का प्रयास कर रहा है, कोई व्यक्ति दुखी होने का प्रयास नहीं करता है, हर व्यक्ति सुखी होने का प्रयास करता है, एवरीबडी इज ट्राइंग टू बिकम हैप्पी। तो ने कहा कि अगर सुख इधर है सब लोग सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में उसको बहुत सारे दुख मिलता है, लेकिन नहीं चाहते हुए भी मिलता है, वो दुख को नहीं चाहता था लेकिन फिर भी वो दुख प्राप्त हुआ उसको, वो सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे, वो प्रयास की रास्ते में उसको दुख प्राप्त हो रहा है। तो बाद में उन्होंने कहा टेक द अदर वे राउंड, इफ एवरीबडी वॉन्ट इफ समबडी वॉन्ट्स टू बिकम अनहैप्पी, अगर कोई दुखी होना चाहता है, मान लो वो दुख इधर है, वो दुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, तो रास्ते में क्या मिलेगा उसको? सुख मिलेगा। अगर वो सुख को प्राप्त करने की प्रयास के बीच में उसको दुख मिलता है, दुख को प्राप्त प्रयास करने की रास्ते में सुख नहीं मिलेगा? एग्जैक्टली ऑपोजिट होना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा इफ समबडी वॉन्ट्स टू बिकम अनहैप्पी, इफ ही इज ट्राइंग टू बिकम अनहैप्पी, ही विल गेट हैप्पीनेस इन बिटवीन। यानी हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, जो हमारे जीवन में जो सुख और दुख जो आने वाला है, वो हमारे हाथ में नहीं है, दैवाद। तो जैसे इस श्लोक में प्रहलाद महाराज इस बात को उच्चारण करते हैं कि ये जो सुख है वो कैसे हैं, देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभते दैवात। ये शब्द है दैवात, बाय सुपीरियर अरेंजमेंट। ये देवता लोग कर्मणा दैवनेत्रेण, ये देवतालों की योजना से, हमारी कर्मों के हिसाब से जो सुख रखा है, जो दुख रखा है, वो मिलेगा ही। हमारा प्रयास से सुख और दुख प्राप्त नहीं होता है। अगर दुख को प्राप्त करने के लिए भी प्रयास करेंगे, मान लो वो कर्मों में आपको वो दुख नहीं रखा, वो दुख नहीं मिलेगा। मैं बहुत अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया है इस बात को, मैं देखा भी लोगों का। जैसे हमारे कॉलेज में कभी बहुत लंबा समय का छुट्टी मिलता है तो, और बहुत शारीरिक परिश्रम भी होता है, एक दिन छुट्टी मिल गया तो समझ लेना चाहिए कि बड़ा उसको आराम मिला, हाँ वो बड़ा खुश हो जाता है, आनंद हो जाता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक को आँख आ जाता है ना, लाल लाल हो जाता है, कंजक्टिविटिस बोलते हैं उसका, वो हो गया। तो हमारे रेसिडेंट डॉक्टर के पास वो बेड रेस्ट, 3 दिन का बेड रेस्ट ले लिया, 3 दिन वो आराम से सो सकता है, उसका कोई प्रोग्राम है, कॉलेज नहीं जा सकता। ऐसा हुआ तो एक हुआ, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को हुआ, जितने लोगों को हुआ वो सबको छुट्टी मिला। एक मेरा मित्र था, वो बड़ा आलसी व्यक्ति था, उसको भी छुट्टी चाहिए था, लेकिन उसको तो होगा नहीं आँख। तो उसने, मैंने बोला कि तुमको भी ये ले लो, तो सो मुझे तो होता नहीं, वो डॉक्टर के पास गया, वो आँख ऐसे लाल करके उसको कंजक्टिविटिस था, डॉक्टर ने बोला तो 1 घंटा सो जाना, कल ठीक हो जाएगा। तो उसको मिला नहीं। तो उसने मुझे पूछा, तो मैंने बोला कंजक्टिविटिस ऐसा चीज़ है, अगर किसी की आँखों में आँख डाल के देखोगे ना तो अपने आप आता है, ऐसा सुना। तो उसने क्या किया, जिसको कंजक्टिविटिस है उसको ज़बरदस्ती आँख खोल के देख रहा है, देखो मुझे। वो तो होता ही नहीं, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तो किसी ने उसको कह दिया, तो उसके आँखों का जो पानी आता है ना उसको निकाल के अपनी आँख में डालता, आता है तुमको। तो कितना भी प्रयास किया लेकिन उसको हुआ ही नहीं है। यानी अगर आप दुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो कितना बहुत दर्द होता है, देख नहीं सकते हो कितना दुख का काम है। दुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया लेकिन फिर भी वो मिला ही नहीं उसको, ही डिड नॉट गेट इट। तो और एक स्टोरी है, बड़ा शुद्ध सेवक एक बार स्टोरी को बता रहे थे, बड़ा विचित्र स्टोरी है। एक व्यक्ति आया, तो उसने प्रवचन में बैठा, तो प्रवचन में साधु ने कहा जो आपके कर्मों में है वही आपको मिलेगा, तो इसमें दो राह नहीं, आपको प्राप्त ही होगा। तो उसने सोचा मैं टेस्ट करता हूँ। उसने क्या किया, दो रास्ते में जा रहा था और हाथ में उसके लिए खाना था, उसने सोचा मेरे पास तो खाना है, मैं खाऊंगा तभी तो मुझे प्राप्त होगा, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको आज देखता हूँ मेरे कर्मों में है खाना, लेकिन मैं उसके विरुद्ध जाऊँगा, मुझे नहीं मिलेगा, मैं खाऊँगा नहीं, देखता हूँ। तो उसने क्या किया, वो नीचे पेड़ के ऊपर चढ़ गया, वो नीचे कुछ आहार रखे, तो आज मैं खाऊंगा नहीं। तो चढ़ गया, तो क्या हुआ, तो उधर से रास्ते में कुछ चोर लोग जा रहे थे, उनको बहुत भूख लग रहा था, तो उन्होंने सोचा उधर बहुत अच्छा खाना पड़ा हुआ है, हम खाएंगे उसको बैठे। तो चोर का जो इंचार्ज, उन्होंने कहा कि हो सकता है इसके अंदर जहर हो, तो कोई हमको फंसाने के लिए क्या कर रहा होगा, उधर जहर डाल के ऐसा रखा होगा, देखो इधर ऐसा तो खाना तो कोई रखेगा नहीं, कोई आजू बाजू में होगा। तो ढूंढने तो ऊपर मिला, पेड़ के ऊपर ये था। तो हाँ देखो ये हमको मारने के इसके अंदर जहर डाल के रखा है, उसको बुलाओ नीचे। उसको बुला के चोर लोगों ने कहा इसके अंदर जहर रखा है। बोले नहीं 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 आप खाओ, मुझे नहीं खाना है। ऐसा नहीं खाना है तुमको, तो तुमको खिलाएंगे आज, तुमके तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये चोर लोगों ने क्या किया, जबरदस्ती उसको खिलाया। तो भले ही उसके कर्मों में था नहीं, लेकिन उसको जबरदस्ती उसको खाना ही पड़ा। ही हैड टू ईट इट। कर्मों में नहीं था, लेकिन उसको नहीं करके त्याग करने के लिए प्रयास किया, लेकिन हुआ नहीं, ही हैड टू। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के परे नहीं जा सकता। एवरीबडी हैज टू एक्सेप्ट व्हाटएवर, जो भी कर्मों में है उसको भोगना ही पड़ेगा। सुख या दुख तो भोगना ही पड़ेगा। ही हैज टू, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, इसका कोई रास्ता नहीं है। तो प्रहलाद महाराज इस श्लोक में दो बहुत महत्वपूर्ण बातों को कहते हैं कि दैवाद, देवताओं की योजना से अपने कर्मों में जो है वो चीज मिलता है, और दूसरा है, दूसरा बात ये है, आप जिस सुख की प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हो वो जो सुख है वो कहाँ है, देह योगेन देहिनाम सुखम सर्वत्र लभते, सर्वत्र लभते, ये सर्वत्र हर जगह हर योनि में प्राप्त होता है। सर्वत्र मतलब सर्व योनिषु, ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि आत्मा जो है सर्वगता, ये सर्वगता मतलब सर्व योनिषु जायते, सारे योनियों में आत्मा है। तो उसी बात को इधर प्रहलाद महाराज कहते हैं सर्वत्र लभ्यते, ये हर योनि में प्राप्त होता है। कुत्ते की योनि बोलो, बिल्ली की योनि बोलो, जो योनि बोलो, हर जगह वो सुख प्राप्त होता है। कैसा सुख है वो, सुखम इंद्रिकम, सुखम इंद्रिकम, जो इंद्रियों का जो सुख है। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं सुखम अत्य इंद्रियम, जो वास्तविक सुख क्या है, इंद्रियों के परे जो है भगवान की सेवा में भक्ति में जो सुख है वो वास्तविक सुख है। लेकिन वैसा सुख का वर्णन नहीं हो रहा है इधर, कौन सा सुख का है, इंद्रिकम, इंद्रिय जनित सुख है। इंद्रियां, इंद्रिय विषयों से उनका जो संस्पर्श होता है, यही संस्पर्श जाप होगा दुख यो न एवते, ये जो दुख से उत्पन्न हुआ सुख है, ये दुख को जो सुख मान के बैठते हैं वो इंद्रिय जनित सुख है। वो जो सुख का दो स्वरूप है, एक तो सर्वत्र लभ्यते, सर्वत्र लभ्यते मतलब सारे योनियों में प्राप्त होता है। ये जो उस सुख को प्राप्त करने के लिए मनुष्य योनि की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू हैव ए ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो कोई व्यक्ति कहेगा कि जो हमारे कर्मों में जो है वो तो आएगा, वो तो स्वीकार करेंगे। हाँ, तो इधर बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बड़ा दार्शनिक प्रश्न है। एक बार मैंने पूछा मेरे शिक्षा गुरु से कि हमको उपदेश दिया जाता है इंद्रिय तृप्ति से आप दूर रहो, लेकिन मान लो कि वो इंद्रिय तृप्ति आपके कर्मों में है तो आपको मिलेगा ही। जैसे हम कहते हैं दुख अगर हमारे कर्मों में, वो दुख मिलेगा ही। इंद्रिय तृप्ति हमारे कर्मों में है तो इंद्रिय तृप्ति मिलेगा ही, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप बोलते हो इंद्रिय सुख से दूर रहो, और एक जगह कहते हो कि जो कर्मों में हो मिलेगा ही, तो उससे आप दूर नहीं जा सकते हो, दुख को भोगना ही पड़ेगा, तो सुख को भोगना ही पड़ेगा, तो कैसे, ये दोनों कैसे समझे? ये बड़ा सुंदर विरोधाभासमक चीज है। एक तो इंद्रिय तृप्ति में दूर रहो, दूसरा अगर वही इंद्रिय तृप्ति आपके कर्मों में तो क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, इसका क्या जवाब है, व्हाट इज द, हाउ डू यू डू इट। तब उन्होंने कहा जो हमारी कर्मों में है उसी के अनुसार हमको इंद्रिय तृप्ति की वस्तु हमको प्राप्त होता है। हमारे कर्मों में जो है वो इंद्रिय तृप्ति की वस्तु हमको प्राप्त होता ही है, यू कैन नॉट अवॉइड इट। जैसे मान लीजिए किसी को कर्मों में बहुत सारा सम्मान या यश लिखा है, वो उसको आएगा, इट विल डेफिनेटली कम। अगर मान लीजिए किसी के जीवन में बहुत सारा विषय वस्तु है, विषय इंद्रिय तृप्ति है, वो आएगा है, तब वो भक्त को क्या करना चाहिए, इससे कैसे दूर रहेगा? वो तभी उससे दूर रह सकता है जब उन चीजों को भगवान की सेवा में लगाता है। भगवान की सेवा में कैसे लगेगा, उनको स्वीकार करेंगे, जो स्वीकार करने से उनके जो कर्मों में वो तो आएगा ही, आके उसको क्या करेंगे, उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे। मान लीजिए किसी के कर्मों में ऐसा रहता है कि वो बिना प्रयास का धन आता है, बिना ज्यादा मेहनत करे धन आता है, ये देखा भी है कुछ मेरा हमारे जो कुछ ऐसे रिश्तेदार है वो लोग हैं, धन प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत किया, बहुत संघर्ष किया, और कुछ ऐसे मेरे स्टूडेंट्स मेरे मित्र लोग थे अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत प्रयास करते थे, लेकिन मैं कुछ प्रयास ही नहीं करता था, कुछ नहीं, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन फिर भी पता नहीं अपने आप अच्छा नंबर कभी आ जाए, कभी ऐसे ही बस बहुत सारा पैसा आ जाता है। इट इज़ अ फैक्ट, कुछ लोगों को बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोगों को बिना प्रयास का आ जाता है, ऑटोमेटिकली कम। तो क्या करना चाहिए उस समय, व्हाट वी शुड डू, वी शुड एक्सेप्ट इट। जब उसको स्वीकार करेंगे तो क्या होगा, तो अपने कर्मों के हिसाब से जो है वो लिया, लेकिन तुरंत उसको भगवान को अर्पण कर देना चाहिए, यू शुड गिव इट अप। इससे क्या होगा, हमारे कर्मों का जो लॉ है वो भी हो गया और साथ साथ में हमारा शुद्धिकरण भी हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति वो स्वीकार करता है, वो अपने अपना मेरा है करके वो ले लेता है, तो वो समझ लेना वो कर्म बंधन में फंस जाता है। तो इवन दुख भी, एक बड़ा सुंदर जगन्नाथ जी का ये लीला थोड़ा एक कहेंगे। एक भक्त था, वो उन्हें सोचा कि उनको बहुत उनको संतान नहीं हो रहे थे, तो दक्षिण भारत के थे, तो उन्होंने सोचा कि क्या फ़ायदा, भी संतान नहीं है तो हम जगन्नाथ जी के पास जाएंगे, उनकी सेवा में लगे रहेंगे, अगर उनका इच्छा होगा तो मुझे हमको संतान मिलेंगे, और ये प्रार्थना करेंगे तो अगर हमारे कर्मों में संतान रखा है तो उनको वापस हमको जगन्नाथ जी को अर्पण कर देंगे। तो दोनों गए पति पत्नी, जाके जगन्नाथ जी से प्रार्थना किए, वैसी हमारी इच्छा है एक संतान प्राप्त करना, हमारी कर्मों में है तो आप प्रदान कीजिए, लेकिन अगर होंगे तो भी आपका ही प्रसाद समझ के वापस आपको हम दे देंगे। तो कुछ समय के बाद उनको एक पुत्री हुई, जब पुत्री हुई तो क्या हुआ, पुत्री बहुत सुंदर नृत्य करने लगी, बहुत उनके संगीत के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण था। तो ये कोई और नहीं है, पद्मावती है, वो जयदेव गोस्वामी की पत्नी बनी बाद में। ये पद्मावती जैसे 5-6 साल की बालिका थी, उस समय इतना उनके अंदर संगीत और नृत्य करने की कला थी, तो अनेकों लोग जगह से बहुत सारे लोग आके उनके संगीत सीखते थे उनसे, बहुत सारे लोग आके नृत्य सीखते थे उनसे, 5-6 साल की बालिका थी, केवल उनका नृत्य करते हुए देखने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। तो जगन्नाथ जी देख रहे थे कि उनको तो ऐसा था कि इनका प्रार्थना था कि जो भी संतान होंगे उनको वापस करेंगे, जगन्नाथ जी को अर्पण करेंगे, अभी भी उनको घर में रखे हुए हैं। तो एक दिन जगन्नाथ जी एक पंडे के सपने में आया, एक ब्राह्मण के सपने में आके उन्होंने कहा कि आप जाके बताओ कि उन्होंने मेरे सामने आके मुझे प्रॉमिस किए थे वापस अर्पण करेंगे करके। तो एक भिक्षा मांगते हुए ब्राह्मण गया उनके घर में, घर में जाके बहुत ही भिक्षांदेही कहा, तो उस घर में वो पद्मावती की माँ आई, तो उन्होंने कहा कि आप भूल गए हो, आप जगन्नाथ जी को धोखा दे रहे हो, आप चोर हो। तो उन्होंने कहा आप तो भिक्षा मांगने के लिए आओ, बोलते हो मैं चोर हूँ, आप याद करो आप जगन्नाथ जी को प्रॉमिस किए थे आपकी बालिका को जगन्नाथ जी को अर्पण करेंगे, ऐसा क्यों नहीं अर्पण किया आपने अभी तक। तब ये तो बात केवल दोनों लोगों को मालूम था, तो पति को उन्होंने कहा ऐसा, एक ब्राह्मण ने कहा, तो पति ने कहा ये सही बात है, तो जगन्नाथ जी को अपनी पुत्री को कैसे अर्पण करेंगे, हाउ डू वी ऑफर इट। तो पति ने सोचा कि हम जाएंगे जगन्नाथ जी के पास अपनी पुत्री को लेके, उनके सामने अपनी पुत्री को रख के वापस आ जाएंगे, हमारा कर्तव्य हो गया, हमको तो एक इच्छा था पुत्री होना चाहिए, संतान होना चाहिए, हो गया, अभी उनको रख के आएंगे। क्योंकि माँ ने कहा एक छोटी सी बालिका है, 6 साल की बालिका है, उनको ऐसे मंदिर में छोड़ के आ जाएंगे, तो नहीं मैं नहीं कह सकती हूँ, मैं तो उनके साथ में रहूँगी। तो पति ने कहा कि ठीक है आप उधर हो गए मैं भी उधर रहूँगा, उनका घर बार सब बंद किए, जगन्नाथ जी के मंदिर में गए, बस जगन्नाथ जी को कहा कि मेरी पुत्री आप उसको संभालो, ऐसा उन्होंने छोड़ दिया, छोड़ के वो मंदिर में वो लोग रहने लगे, जो भी प्रसाद मिलता था उससे वो लोग जीते थे, उधर ही सोते थे, उधर ही सब कुछ अपना रहना सब कुछ उधर ही होता था। 2 साल उन्हें ऐसे मंदिर में रह गए, कोई एक पेड़ के नीचे सो जाना बस, और प्रसाद अपनी दैवाद जैसे मिलता है अपने अनुसार मिल जाता है, भगवान की योजना से जो मिलना तो मिल ही जाता है, तो ऐसे उनको प्राप्त होता था टोटली सरेंडर, और उधर कीर्तन होता था, नृत्य करती थी, ऐसे पूरा सभी भक्तों को आनंद प्राप्त होता था। ऐसा 1 साल 2 साल हुआ, जैसे ही 8 साल हुआ उनके बालिका का, पहले ज़माने में ऐसा था कि जैसे लड़कियाँ 7-8 साल की हो जाती थी, पिता को बहुत चिंता हो जाता है मैं उनको किसके साथ विवाह कराऊँ, तो वैसे ये बालिका तो बड़े योग्य, इतना सुंदर, इतना कड़ा है और इतना सुंदर भी है, जितना सुंदर होती है पुत्री उतना उनको बहुत मुश्किल होता है माता पिता को योग्य वर ढूंढना। तो उनको चिंता होने लगा कि अभी मैं क्या करूँ क्या करूँ, मेरी पुत्री का विवाह करना है। तो ऐसे दो तीन दिन सोचने के बाद एक दिन रात को जगन्नाथ जी उनके सपने में आए। सपने में आके उनको कहा तुम चोर हो। तो ये बोला कि मैं चोर कैसा हूँ। तो जगन्नाथ जी ने कहा तुम अपनी पुत्री का पद्मावती का विवाह का चिंता क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा तो ये तो उनके विवाह कराने का जिम्मेदारी तो मेरा, चिंता तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, जगन्नाथ जी ने उनको कहा तुमने तुम्हारी पुत्री को मुझे सौंप दिया है, मुझे सौंप दिया है तो तुम्हारी पुत्री का देखभाल करने का सब जिम्मेदारी मेरा है, उनको विवाह करने का चिंता भी मेरा है। और तुमने क्या किया, वो विवाह कराने का चिंता जो मेरा है तुमने उसको चुरा लिया है, यू हैव स्टोलन दैट। तो इस प्रकार व्यक्ति जब भगवान को पूर्ण तरीके से शरणागत होता है तभी वो ये कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। नहीं तो अगर कोई व्यक्ति सोचने लग जाए ठीक है मैं इंद्र तृप्ति से दूर रहूंगा लेकिन बिना शरणागत हुए, वो इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकता। भगवान का शरणागति एकमात्र रास्ता है अपने कर्म बंधन से बचने के लिए। नहीं तो कुछ समय के लिए हम जबरदस्ती दूर रखने के लिए प्रयास कर सकते हैं इंद्र तृप्ति को, लेकिन हमारे जो पहले किए गए अच्छे कर्म हैं वही सबसे बड़ा बाधक है। कोई व्यक्ति बोल सकता है मेरे पहले किए गए पाप कर्म हैं वही मेरे लिए बाधक है भक्ति में। नहीं, पाप कर्म से पुण्य कर्म जो है वो ज्यादा बाधक है, क्योंकि पुण्य करने से व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है, इंद्र सुख प्राप्त। ये इंद्र सुख क्या है, वो भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है। दुख इतना बाधक नहीं है, क्योंकि कुंती महारानी क्या कहती है कि विपद संतता शाश्वत तत्र जगत गुरु। अगर दुख आता है तो व्यक्ति भगवान का शरण में प्रवृत्त होने का संभावना है, वो ज्यादा प्रवृत्त हो सकता है, दुख में भगवान के पास जा सकते हैं, लेकिन सुख में पदे इंद्र तृप्ति आता है वो खतरा है भक्त के लिए। इसलिए जब शास्त्रों में वर्णन किया जाता है भक्ति करने के द्वारा हमारे सारे पाप कट जाते हैं। पाप मतलब क्या है, पाप के अंदर पुण्य भी है जो पहले किए गए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजामि त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो पाप शब्द का मतलब क्या है, जो पहले किए गए पुण्य कार्य भी पाप है। तो एक व्यक्ति ने कहा कि प्रभु जी मैं तो भगवान का शरण लिया हूं लेकिन फिर भी बहुत सारा दुख आ रहा है। मैंने कहा कि आपके पहले किए गए पुण्य कट रहे इसलिए। तो उन्होंने कहा प्रभु जी पाप कटना चाहिए पुण्य तो रहना चाहिए ना। नहीं, वो जब भक्ति करना शुरू करता है असलियत में हमारे पहले किए गए पुण्य कटते हैं, बाद में पाप कटेंगे, तो असलियत में ये पुण्य भी पाप है। तो ये विचार जरा जब तक धारण नहीं करता है तब तक भले ही हमारे पास कितना भी साधन भजन भी क्यों ना हो, और जब उस इंद्रिय तृप्ति की विषय वस्तु हमारे सामने प्रकट होता है इट बहुत डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है उससे दूर रखना। ये तुरंत जैसा आता है तुरंत भगवान को अर्पण करो, जैसा आता है तुरंत भगवान को अर्पण करो, इमीडिएटली ऑफर टू योर स्पिरिचुअल मास्टर। इससे कभी कभी मैं इस बात को कहता हूँ भक्तों को कि जैसे मान लीजिए आप कहीं भी जाते हो तो जाने की क्या जरूरत है। जैसे एक दिन मुझे ये स्वयं अनुभव है, एकदम शुरुआत में 8-10 साल पहले की बात है, मंदिर में ज्वाइन किया था। तो वो टाइम में मैं ऐसे जपा कर रहा था रास्ते में, अचानक एक व्यक्ति ऐसे आया, पता नहीं कहाँ से क्या आया, वहाँ के वो पॉकेट में अपना हाथ रखा, निकाला, ऐसा पैसा गिना। मैं देख रहा था क्यों गिन रहा है, ऐसा गिना ये 10 है महाराज काफ़ी है आपके लिए, ऐसा बोला। तो मैं तो ऐसा मैं समझ नहीं आती कौन है क्या है, वैसे हाथ में ऐसा रखा और चला गया। तब तो सोच रहा था कि ये कहाँ से आया, वेयर डिड इट कम फ्रॉम। ना मैं कोई बड़ा प्रीचर हूँ, कोई इसे प्रचार नहीं किया, कुछ बोला नहीं उसको, वो दो ये दो ऐसा कुछ नहीं किया, बट इट केम, हाउ डिड इट कम, ए दैवाद। ये भक्तों को ये अनुभव करना चाहिए, बहुत सारे कुछ चीज़ें हमको प्राप्त होता है वो दैवाद है। ये कभी कभी हम कुछ चीज़ों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते लेकिन होता नहीं है, लेकिन बिना प्रयास का अचानक कभी कभी हो जाता है। ये क्या है, ये अचानक नहीं है, ये हमारे कर्मों में है, ये दैवाद होता है। तुरंत जैसे आया मैं तो घबरा गया ये कौन है, किसके लिए दिया, क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। वो इतना भी बोला नहीं कि ये दान है इसके लिए वापर, उसके लिए कुछ नहीं, महाराज ये काफी है आपके लिए। मैं तो ऐसे ही देखता रहा, वो हाथ में ऐसा रख के चला गया। अभी वो इंसिडेंट याद है मुझे, आई स्टिल रिमेंबर दैट इंसिडेंट, कि तुरंत मैं गया तो मैं इसके क्या करूँ। तब मैं पूछा कि क्या करना चाहिए, अरे तो हुंडी में डालो नहीं तो अकाउंट्स में डाल दो, ऐसा उन्होंने कहा। अभी अकाउंट में डालने के लिए रिसीट काटा तो किसके नाम पे काटे, वो भी नहीं था, इट वॉज नॉट नोन, इट इज दैववाद। तो हमारे जीवन में भी ये दैववाद, इसको बहुत याद रखना चाहिए। जो भी प्राप्त होता है ये कर्मों के हिसाब से जो है वो प्राप्त होता है, वी डोंट हैव टू एंडीवर फॉर एवरीथिंग। तो एक बार इसके ऊपर मैंने क्लास लिया, क्लास लेने के बाद एक व्यक्ति ने, एक भक्त ने कहा प्रभु जी ऐसा ऐसा है, तो उत्साह निश्चयात धैर्यात, हाँ तो आपको प्रयास करना चाहिए उत्साह के साथ कुछ कार्य करना चाहिए। क्या है वो प्रयास, किसके लिए करना है? प्रयास करना है तो केवल ये जो साधन है नवधा भक्ति है, जो कर्मों के अंतर्गत नहीं आता है, केवल उसी में हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए। बाकी जितने भौतिक प्रयास है वो केवल मूर्ख है, इट इज मूर्खतावश करते हैं, करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू। एक बार मैंने क्लास दिया था, उसके बाद एक कुछ लोगों ने प्रभु जी ऐसा कैसे, वो प्रश्न में पूछा था, एक स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया था। मैंने कहा कि आप ये मत समझो कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, धंधा कर रहा हूँ, इसलिए मेरे घर चल रहा है। बहुत सारे लोग नौकरी भी करते धंधा भी करते लेकिन फिर भी उनका घर नहीं चलता बराबर। आप नौकरी छोड़ दो फिर भी आप अपना घर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने आप चलता है, यू डोंट हैव टू। आप यकीन मानो ना मानो, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो अपने आप कोई भौतिक प्रयास नहीं करते, अपने आप सब कुछ प्राप्त होता है, एवरीथिंग कम्स इज अरेंज्ड। ये विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये विश्वास नहीं है कि कृष्ण मुझे पालन नहीं करेंगे, तब तक ये जो भागवत धर्म है वो पालन नहीं हो सकता है, 100% शरणागति वो नहीं हो सकता। तो ये प्रहलाद महाराज का उपदेश ये है, खास करके उन्होंने देव दो कहा, मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, जो सर्वत्र हर जगह प्राप्त होने वाला चीज़ है उसको क्यों प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं मनुष्य जन्म। ऐसा चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्रयास करो जो यद भ्रमत्या ऊपर यदहा, ऊपर नीचे जाने के बाद भी जो प्राप्त नहीं होता है, अमृतत्व को प्राप्त करने प्रयास करो। और दूसरा ये बात यह है कि दैववाद, सुख और दुख जो अपने आप से आने वाला है, इसके लिए आप प्रयास मत करो, सारा प्रयास केवल भागवत धर्म में लगाओ, ये बात इस श्लोक में कहा गया है। तो कोई प्रश्न है तो पूछे, नहीं क्वेश्चंस दो मिनट के लिए। अच्छा, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको जो दिया जो भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, तो निश्चित रूप में ऐसा कोई चीज नहीं जो भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, हर चीज भगवान को अर्पण कर सकते हैं। अर्पण दो तरीके से है, एक है तदी वस्तु है, सीधा भगवान की सेवा में लगता है, दूसरा इनडायरेक्टली लग सकता है। जैसे मैं आपको, मैंने जयानंद प्रभु का स्टोरी सुनाया था, तो शराब है, तो उन्होंने भगवान की सेवा में लगा, जगन्नाथ जी की सेवा में, कैसे है कुछ शराबियों को शराब पिला दिया और उनको भगवान की जगन्नाथ जी सेवा में लगाया। तो वो काम करने के लिए हमको बहुत एक्सपर्टाइज होना चाहिए, वी शुड बी वेरी एक्सपर्ट। तो भक्त मतलब वही है, वन हु इज एक्सपर्ट इन एंगेजिंग एवरीथिंग इन कृष्णा सर्विस, क्योंकि हर चीज़ भगवान से उत्पन्न हुआ है, ऐसा कोई चीज़ नहीं जो भगवान की सेवा में नहीं लगा जा सकते, एक्सेप्ट एक चीज़, ईर्षा। ईर्षा को छोड़ के, ईर्षा को त्याग करके भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो भगवान के सेवन लेके जा सकते। एनीथिंग, गाड़ी बोलो, प्रभुपाद जी एक बार देख रहे थे, एक बड़ा सा बिल्डिंग था, नीचे देख रहे थे, बड़ा ट्रैफिक जाम था, ऐसे बहुत आधा घंटा तक देख रहे थे। भक्तों ने पूछा प्रभुपाद जी क्या आज देख रहे हो आप, तो उन्होंने कहा कि इतने सारे गाड़ियाँ, मैं सोच रहा था ये सबको कृष्ण की सेवा में कैसे लगाऊँ, वो ट्रैफिक जाम है। तो ट्रैफिक जाम हम देखेंगे, हम फ्रस्ट्रेट होंगे, क्या ट्रैफिक जाम देखो, इधर कितना गंदगी, पोल्यूशन है, वो सब देखेंगे। प्रभुपाद ने वो सब नहीं देखा, उन्होंने ये देखा कि ये जो गाड़ियाँ हैं इसको कृष्ण के सेवा में कैसे लगाया जाए, हाउ टू यूज इट इन कृष्ण सर्विस, दैट्स कॉल्ड एक्सपर्ट डिवोटी। देन यू फॉर ए न्यू कमर इज ऑल्सो एक्सपर्ट डिवोटी वेन ही इज फॉलोइंग अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट डिवोटी। तो ऐसे वो एक स्टोरी है ना, प्रभुपाद जी से उन्होंने पूछा कि अभी और कोई महाभागवत नहीं है, केवल 12 ही है, तो यू कैन ऑल्सो बिकम महाभागवत इफ यू फॉलो देम, दैट इज वाई। इसलिए भक्ति जो है अनुगत में किया जाता है, यू ऑलवेज डू इन द फुटस्टेप्स ऑफ द डिवोटीज, यू कैन डू इट। हाँ नहीं, वो प्रारब्ध कर्मों से मिलती नहीं है, वो श्रद्धा जो है वो प्राप्त होता है आपका भक्ति उन्मुख सुकृति के द्वारा, भगवान या भक्तों की किया गया सेवा। जिस समय आप भगवान या भक्तों की जाने अनजाने में सेवा करते हो, तुरंत श्रद्धा बढ़ता है। श्रद्धा बढ़ने का मूल कारण यही है, भक्तों की या भगवान की जाने अनजाने में किया गया सेवा। ऐसा कभी कभी लगता है कि मेरा श्रद्धा कम हो रहा है, तुरंत आप भक्तों का सेवा करो, भगवान का सेवा, तुरंत श्रद्धा बढ़ता है, यही मापदंड है। ये वो कर्मों के अंतर्गत नहीं आता है, इट इज नॉट दिस थिंग, ठीक है। हाँ नरक में मिलता है। जैसे असल में जो सुख और दुख जो बताते हैं ना, वो बहुत रिलेटिव है। जैसे मान लीजिए एक सात्विक व्यक्ति के लिए जो सुख है, तो वो तमसिक व्यक्ति के लिए दुख है। अस्तित्व में सुख और दुख हम दो बताते हैं, अस्तित्व में दो नहीं, एक्चुअली तीन है, त्री, सुख और दुख, ये सब चीज़ें तीन है, सात्विक, रजसिक, तमसिक। जो तमोगुणी जीव है वो नरक में सुख अनुभव करता है, या तमोगुणी जीव नरक में सुख अनुभव करता है। जैसे वो उदाहरण दिया था ना कि यू गेव द एग्जाम्पल ना ब्रह्मचारी क्लास में, हाँ, तो एक भक्त था, तो वो चोर था, चोरी किया था, चोर था, वो पकड़ा गया, वो पुलिस से भागते भागते भाग के वो हरे कृष्ण मंदिर में घुस गया। तो भक्त ने कहा, क्या कहाँ से आया? बोले कि बस मैं इधर आया हूँ, ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन कर लिया। तो सुबह मंगल आरती कर रहा है, जपा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, 4 महीना हो गया, कोई पकड़ा नहीं, कोई नहीं, तो वेशभूषा बदली हो गया। तब उन्होंने मैं कहा, एक सीनियर भक्त से पूछा कि मैं चोरी करके ऐसा आया हूँ, मैं क्या करूँ, मैं बड़ा गुनाह किया हूँ। तब भक्त ने कहा, देखो भक्त जैसा साथ होता, जाके आप कबूल कर दो, पुलिस के पास जाकर। उन्होंने कहा, तो पुलिस वाला अरेस्ट किया, कोर्ट में हाजिर किया। तो जज ने पूछा कि 4 महीने आप कहाँ थे? तो बोला हरे कृष्ण मंदिर में था। क्या करते थे आप? तो उन्होंने कहा कि मैं सुबह उठता था 3:30 बजे। तो जज घबरा गया, 3:30 बजे? तो बोला कि बाद में आप क्या करते हो? मतलब कि हम ठंडे पानी से नहाते। वो और घबरा गए, इतने ठंडे में ठंडे पानी नहाते। तो बाद में जज बोला कि आओ बाद में क्या करते हो? कि हम भगवान के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं, नाचते हैं। तो और क्या करते हो? ना गीता पढ़ते हैं, भागवतम क्लास करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते। क्या खाते हो? तो बोला कि वेजिटेरियन फूड। मैं मांस मछली नहीं खाते हो? तो शराब नहीं पीते हो? तो बाद में हम मंदिर में थोड़ा मंदिर साफ सफाई का सेवा करते। तो जज ने कहा, मैं आपको क्या सजा दूँ? जेल से ज़्यादा सजा तो उधर भोग रहे हो आप। हरे कृष्ण मंदिर जो है जेल से अच्छा है, जेल से खराब है, उधर ही रहो आप। तो वो जज के लिए क्या था? जेल जो है हरे कृष्ण मंदिर से ज्यादा सुखमय स्थान था, क्योंकि उसका गुण ऐसा है, कि नहीं? तो ऐसे ही जो रजसिक व्यक्ति के लिए सात्विक चीजें जो है दुख का कारण है, लेकिन सात्विक व्यक्ति के लिए तमसिक चीज है। और ये शास्त्रों का वर्णन जो है सात्विक लोगों के लिए है, और जब नरक में दुख है कहा जाता है वो किसके लिए है? सात्विक व्यक्ति के लिए है? जब अगर बोलेंगे पूरा राजसिक तमसिक लोग हैं उनको बोलेंगे कि आप जो है बहुत दुख भोग रहे हो क्लब में नरक में जाके, तो बोलेंगे दुख क्या है, तो ये तो सुख है उसके लिए. दैट इज द थिंग. व्हेन यू से सुखा और दुखा, कोई भी चीज ऑलवेज त्रिविधा, त्रिविधा स्पृथा, सात्विक राजसिक तमसिक, तो इट्स ऑल ग्रेडेशन. ठीक है. ग्रंथ राष्ट्रीय भागवतम की श्री प्रभुपाद की जय.